नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह के मसासे भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यिर्मयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हमें परमेश्वर इसराइलियों के जीवन से सिखा रहे हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से, बीमारियों से, बुरी आदतों से, गंदे कामों से आप उन्हें छुटकारा दें, ताकि आज उनका जीवन आप में आनंदित होने पाए। जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में है, हमारी प्रार्थना उनके लिए भी है, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इन दिनों यिर्मयाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे थे पिछले अध्ययन में कि एक कुम्हार, जिसका उदाहरण परमेश्वर ने हमें समझाने के लिए लिया है, कुम्हार का उदाहरण देकर परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हम उसके हाथ में एक मिट्टी का लोंदा है और हमें रूप देने अर्थात आकार देना उसका एक उद्देश्य है। इसी कारण वह हमें परिस्थितियों में चाक पर चलाता है। एक दिन हम पर स्पष्ट होगा कि इसमें उसका एक उद्देश्य है, जैसा भजन संहिता 17 उसके 15 पद में लिखा है, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय के 2 पद में, हे प्रियो, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। वह एक मनोहर सुबह होगी, एक नया दिन होगा। उस दिन परमेश्वर से की गई सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हमें कष्टों से निकालने में वह निर्दयी नहीं था। जी हाँ, उस महिमामय दिन हम समझ पाएंगे कि उस कुम्हार के मन में आपके और मेरे लिए एक उद्देश्य था। देखिए पौलुस इफिसियों को क्या लिखता है। दूसरे अध्याय के आरंभ में उसके शब्द शोकमग्न हैं, जिसका संदर्भ मैं दे चुका हूँ। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 1 पद में कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अंत यही नहीं है, अन्यथा मेरा तो विनाश निश्चित है। परंतु मेरे मित्रों, वह अध्याय 2 के पद 7 में कहता है, वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। मेरे मित्रों, भविष्य में हम कुम्हार की कलाकारी का प्रदर्शन होंगे। हम प्रकट करेंगे कि वह कुम्हार निर्जीव मिट्टी से क्या कर सकता है। उसका महिमावन होगा। जी हाँ, स्वामी के हाथ में होना एक अद्भुत बात है। आइए हम देखेंगे कुम्हार का व्यक्तित्व। अब अंत में हम कुम्हार के व्यक्तित्व को देखेंगे। यह सर्वाधिक महत्व एवं आश्चर्य की बात है। अतः यहाँ पर हम कुम्हार के घर को अंतिम बार देखते हैं। मैं यर्मिया से कहता हूँ, यह कुम्हार तो दयालु दिखाई देता है। यर्मिया कहता है, हाँ वह दयालु है। वह मिट्टी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। वह चाहता है कि मिट्टी उसके अधीन रहे, क्योंकि वह उससे कुछ बनाना चाहता है। मैं कुम्हार के चेहरे को ध्यान से देखता हूँ। ओह, वह कैसा व्यस्त है। वह मिट्टी में कैसी रुचि रखता है। कोई आ रहा है, जा रहा है, उसका कोई बोध उसे नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसा महान कुम्हार है। काश मैं अपने कुम्हार को देख पाता, परंतु धर्मशास्त्र कहता है कि मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता। फिलिपुस ने प्रभु यीशु से पूछा था, और मैं भी पूछना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 8 पद में, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 9 पद में, हे फिलिपियुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरे मित्रों, आइए हम कुम्हार को ध्यान से देखें। देखिए वह परिस्थिति के चाक को कैसे घुमा रहा है। उसके हाथों को देखिए, कैसी कुशलता और कैसी कला, कैसे समर्पण और कैसी कोमलता, और प्रेम के साथ वह मिट्टी के लोंदे पर काम करता है। उन हाथों पर कीलों के चिन्ह हैं। यही नहीं, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 3-10 पद में, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याचकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याचकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यर्मिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इसराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। यहाँ दो पद मुझे विस्मित करते हैं। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। वे शायद जानते नहीं थे कि उसे लहू का खेत नाम देकर क्या कर रहे थे, परंतु आशा करता हूँ कि आप उसे समझने से न चूकेंगे। यह कुम्हार अन्य कुम्हारों से भिन्न एवं महान है। उसने अपना लहू बहाया कि वह उस खेत में जाकर उन टूटे टुकड़ों को उठाकर अपने चाक पर लगाए और एक नया पात्र तैयार करे। मेरे मित्रों, पिछले सप्ताह मैं एक भाई से बात कर रहा था। उसका घर और जीवन टूट चुका था। क्या उसके जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य समाप्त हो गया था? क्या हमारे चूकने पर वह हमसे संबंध विच्छेद कर देता है? ओह नहीं, वह हमारा त्याग नहीं करता है यदि मिट्टी उसके अधीन रहे। आवश्यकता तो यही है कि मिट्टी उसके अधीन रहे। जी हाँ, उसने खेत की कीमत चुकाई है। वह लहू का खेत है। आप अपने जीवन को देखकर कह सकते हैं, आह कैसा विफल जीवन है। मेरे विचार में परमेश्वर हमें काम में नहीं ले सकता है। वह तो इन टूटे टुकड़ों को ही आज काम में ले रहा है, और यदि आप उसे अनुमति दें तो वह आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। उसने आप ही मुक्ति के लिए कीमत चुका दी है। आप उसके लिए अपने आप से कुछ बना नहीं सकते। वह हमें परिस्थितियों के चाक पर रखकर सम्मान का पात्र बना सकता है। मेरे प्रियो, हम मिट्टी हैं और वह कुम्हार है। आप इसे कभी न भूलें। हम आगे देखते हैं कि टूटे हुए पात्र के चिन्ह। अध्याय 19 के पहले पद में परमेश्वर यर्मिया से कहता है कि वह कुम्हार के घर से मिट्टी की एक सुराही ले और प्रजा के पुरनियों और कुछ वरिष्ठ याचकों को गवाह होने के लिए साथ लेकर जाए। यर्मिया की पुस्तक 19 अध्याय उसके दो पद में लिखा हुआ है, हिन्नोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहां ठीकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूं उसे वहां प्रचार कर। हिन्नोमियों की तराई, यह वह स्थान था जहां मोले की भयानक पूजा की जाती थी। परमेश्वर कहता है यर्मिया की पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 और 5 पद में, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा या यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है, और उन्होंने इस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया है, और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, ना उसकी चर्चा की, और ना वह कभी मेरे मन में आया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हिन्नोमियों की तराई घात ही की तराई कहलाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बाल देवता और तोपेत की भेंट चढ़ाया। इसलिए परमेश्वर उन्हें बैरियों द्वारा नष्ट करेगा। यरूशलेम की प्रजा पर यह भयानक दंड की घोषणा करने के बाद परमेश्वर ने यर्मिया से कहा कि वह उन गवाहों के देखते हुए सुराही तोड़ दे। यर्मिया की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया ना जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। तोपेत नामक तराई में इतनी कब्रें होंगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। हिन्नोमियों की तराई से लौटकर यर्मिया ने मंदिर के आंगन में अपना अंतिम संदेश सुनाया। यर्मिया के पुस्तक 19 अध्याय के 15 पद में लिखा है, इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो सब गांव समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता है जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना है। मेरे मित्रों, उसने उन्हें चेतावनी दी, उनसे निवेदन किया और विनती की, परंतु उनके मन नहीं बदले। मिट्टी ने कुम्हार का लंबा विरोध किया। शीघ्र ही बैरी आकर देश को टुकड़े टुकड़े कर देगा। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम चेतावनी को, निवेदन को, विनती को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही कारण है कि हमारे जीवन में भी समस्याएं आ पड़ती है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में अध्याय 20 से 22 तक देखेंगे, जिसका विषय है सिदकियाह के राज्य काल में यर्मिया की भविष्यवाणी और सताव। हिनोमियों की तराई में सुराही तोड़ने के बाद यर्मिया ने यहूदा वासियों को बंधुआई में ले जाने की भविष्यवाणी की। योशिया राजा एक भला राजा था। उसके मरणोपरांत यहोआहाज, यहोयाकीम और सिद्दिकिया राजा हुए। इस समय यहूदा का अंतिम राजा यहोयाकीम राजगद्दी पर बैठा था। वह यहूदा के सब राजाओं से अधिक दुर्बल और दुष्ट राजा है। इसी के राज्य में यर्मिया द्वारा भविष्यवाणी की गई बेबीलोन की बंधुआई साकार हुई थी। अब हम यर्मिया की सेवा और उसके जीवन में परिवर्तन देखेंगे। परमेश्वर का वचन सुनाते समय वह हठी और कठोर था, परंतु व्यक्तिगत रूप से वह कोमल हृदय का मनुष्य था। उसके मित्र योशिया की मृत्यु पर यर्मिया आंसू बहाकर रोया था। योशिया के अनुगामी तीनों राजाओं ने यर्मिया की सेवा को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने उसे तुच्छ जाना और उसके संदेश को अनसुना कर दिया, परंतु वह व्यक्तिगत रूप से सताया नहीं गया था। अध्याय 20 में हम देखेंगे कि यर्मिया को पहली बार सताया जा रहा है। आइए आप मेरे साथ पढ़िए यर्मिया के पुस्तक 20 अध्याय उसके 1 और 2 पद, जहां पर लिखा हुआ है, जब यर्मिया यह भविष्यवाणी कर रहा था तब इमेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। तब पशहूर ने यर्मिया भविष्यद्वक्ता को मारा और उसे उस काठ में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, सताव का आरंभ कहां से होता है? धर्म तंत्र से। आज परमेश्वर के वचन की हानि और बाधा मुक्त विचारक संगठित कलीसिया से उत्पन्न होती है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को त्याग चुके हैं। वे कुछ संदिग्ध लोगों के साथ मेल करके अपने भाईचारे, सर्वप्रियता और विचारों की उदारता की डींग मारते हैं। उनमें प्रेम नहीं रह जाता है। परमेश्वर के वचन का विरोध शराब के व्यवसाय से था, राजनीतिक दलों से कहीं अधिक संगठित कलीसिया की ओर से होता है। यर्मिया का सताव धर्म तंत्र से आरंभ हुआ, बाहर से नहीं, अंदर से। यर्मिया की पुस्तक 20 अध्याय के 3 पद में लिखा है, सवेरे जब पशहूर ने यर्मिया को काठ में से निकलवाया, तब यर्मिया ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं मार्गोमिर्शबीब रखा है। मार्गोमिर्शबीब बड़ा विचित्र नाम है। इसका अर्थ है चारों ओर भय। यर्मिया पशहूर से कह रहा था कि उसके और उसके सब साथियों के लिए भय का भंडार रखा हुआ है। यर्मिया के पुस्तक 20 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख, मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं को तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा। वह उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। मेरे मित्रों, इस भविष्यवाणी के विषय में या इस विषय को यर्मिया बार बार दोहराएगा। दक्षिण राज्य यहूदा दासत्व में जाएगा। उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि यदि मूसा और शमूएल भी होते तो उनका बचना संभव नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी, वे परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके थे। जैसा कि वर्तमान राजा और उसके अग्रगामी दो राजाओं ने अपने कर्मों से प्रकट किया है, हमें देखना यह है कि यर्मिया के साथ क्या हुआ था। उसे तुच्छ जाना गया और उसकी उपेक्षा की गई थी, परंतु अब तक उसे शारीरिक कष्ट नहीं दिया गया था, परंतु अब उसे कष्ट दिया जा रहा था और साथ ही परमेश्वर का संदेश उसे हार्दिक कष्ट पहुंचा रहा था। अतः उसने परमेश्वर को अपना त्याग पत्र देने को निश्चय किया। आपकी भावनाएं इस भविष्यद्वक्ता के लिए उमड़ पड़ती है। वह वर्तमान परिस्थितियों के प्रति उदासीन नहीं था। उसे गहरी चोट पहुंच रही थी, अतः उसका बल टूट रहा था। मेरे विचार में तो उसे मानसिक आघात होने वाला था। यर्मिया की पुस्तक 20 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा न करूंगा न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। यर्मिया के कहने का अर्थ था, इस संदेश से मेरे दिल को चोट पहुंच रही है और मेरा प्रतिफल धर्म गुरुओं की ओर से सताव तथा जनता की उपेक्षा है, अतः मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। परंतु जब वह त्याग पत्र देना चाहता था, तब उसे अनुभूति हुई कि परमेश्वर का वचन उसकी हड्डियों में आग के समान है। उसने कहा, मुझे बोलना ही होगा, मैं चुप रहकर सहन नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, प्रचार की ऐसी अधीरता परमेश्वर के वचन के प्रचारक में होना चाहिए। आपको कैसा लगता है? क्या आपकी सेवा मात्र एक व्यवसाय है या आपका मन उसमें लगा हुआ है? यदि आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम है और दिल से उसका प्रसारण करना चाहते हैं, तो अवसर और सौभाग्य न मिलने के कारण आपको बहुत कष्ट होगा। जब तक कि परमेश्वर का वचन आपके लिए अर्थ न रखता हो, तब तक मेरे विचार में आपको प्रचार कार्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आप यर्मिया के मन के संघर्ष को समझ सकते हैं। वह पुराने नियम के ईश्वर भक्तों के स्वभाव में सहभागी होता है। वह योना के समान, अय्यूब के समान, एलिया के समान प्रतिक्रिया प्रदर्शन करता है। वह एक पुराना गीत गाना आरंभ करता है जिससे उसे कोई लाभ नहीं। वह धार्मिक विषाद था, मेरा जन्म क्यों हुआ। यर्मिया की सुने क्या कहता है, यर्मिया की पुस्तक 20 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य न हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। क्या यर्मिया स्वयं से घृणा करता था और कामना करता था कि उसका जन्म ही नहीं हुआ होता तो अच्छा था? यर्मिया 20 अध्याय के 18 पद में लिखा है, मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा, और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं, और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं। देखो, यह एक पुरानी कहानी है, मेरा जन्म ही क्यों हुआ था। एलिय्याह कहता है, एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर कह रहा था कि मुझे मरने दे। देखें पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 पद में, अय्यूब मरना चाहता था और अपने जन्म के दिन को कोस रहा था। योना भी निराश होकर मरना चाहता था। मरने की कामना करना महामूर्खता है। मेरे मित्रों, आपका जन्म तो हो चुका है और अब आप इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कामना कर सकते हैं, परंतु कामना करने से आप मरेंगे नहीं। आज तक कोई कामना करके मरा नहीं है। यर्मिया बहुत निराश है। आपके मन में उसे आलिंगन करने, शाबाशी देने और प्रोत्साहित करने की प्रबल इच्छा होगी। वह अत्यधिक निराश है, परंतु वह फिर भी परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता है। मेरे मित्रों, अध्याय 21 से 29 में सिद्दिकिया के राज्य काल में उद्घोषित यर्मिया की भविष्यवाणियां हैं। वह यहूदा का अंतिम राजा था और हम यरूशलेम के नष्ट किए जाने तथा उनके बंधुआई में जाने तक पढ़ेंगे। अध्याय 21 और 22 में दिया गया यर्मिया के संदेश से अधिक कठोर अन्य कोई भविष्यवाणी का संदेश नहीं है। हम देखेंगे नबूकदनेस्सर के बारे में सिद्दिकिया को उत्तर। यर्मिया की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, यह वचन यहोवा की ओर से यर्मिया के पास उस समय पहुंचा जब सिद्दिकिया राजा ने उसके पास मलकिया के पुत्र पशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा, हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से चला जाए। मेरे मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि परेशानी में पड़ जाने पर सिद्दिकिया ने पशहूर और उसके दल अर्थात धर्मतंत्र की अपेक्षा परमेश्वर के वचन के प्रचारक के पास जाना उचित समझा। आज मुक्त विचारकों से अधिकांश मनुष्य रेडियो पर बाइबल प्रसारण सुनते हैं। वे सोचते हैं कि वे इन दोनों बातों को संयोजित कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आप समस्याओं से घिर जाएं, तो परमेश्वर के वचन की अपेक्षा आपको कहीं भी संतोष प्राप्त नहीं होगा। सिद्दिकिया यिर्मयाह के पास आता है, परंतु उसे वहां शांति प्राप्त नहीं होती है। यिर्मयाह उसे बताता है और जब तक वे परमेश्वर की ओर ना फिरें, कुछ भी नहीं होगा। यिर्मयाह उसकी अच्छी खबर लेता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां आती है, तो हम परमेश्वर को कई बार कोसते हैं। इतना ही नहीं, अपने जीवन पर और अपने कार्यों पर भी हम क्रोधित होते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि वह कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं, और इसका हल सिर्फ यही है कि हम अपने परमेश्वर की शरण में आ जाएं, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके निकट आएं, ताकि हम उस महान शांति को प्राप्त कर सकें जिसे वह आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं मन के सवाले। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। नादिम है अपने गुनाहों पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है, बच जाएंगे पाप अगर एक नजर करम तूने डाला।